ओम शांति। बाबा के हम सभी बच्चे बेहद के वैरागी बैठे हैं। जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे तो हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवन कहानी पढ़ते थे कि महात्मा बुद्ध को वैराग, जब वो राजकुमार सिद्धार्थ थे तो वैराग कैसे आया था। जब उन्होंने किसी बुजुर्ग को देखा, किसी की डेड बॉडी को देखा, तो उनकी सोई हुई आत्मा जाग गई थी और सब राजपद छोड़ करके वो महात्मा बन गए थे। इसी प्रकार राजा जनक का भी मिसाल हम लोग पढ़ते थे। ज्ञान में जब आए उस समय हमें पता चला कि राजा जनक संगम युग पर बाबा दादी जानकी को कहते, जनक बच्ची। तो राजा जनक के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि राजन, मुझे आपका महल देखना है। तो राजा जनक खुद विदेही थे, डिटैच रहते थे, कारोबार करते हुए भी। तो उन्होंने उस भाई को बोला कि आप ये दीपक लेकर के जाओ और ये दीपक आपका जगता रहे, ये बुझना नहीं चाहिए, आप सारा महल देख करके आओ। तो अब वो भाई महल देख रहा था, लेकिन उसका जो फोकस था, उसकी जो कंसेंट्रेशन थी, उसका जो ध्यान था, वो दीपक पर था। तो कहने का भाव क्या है कि जब राजा जनक ऐसा कारोबार करते हुए विदेही जनक बना, जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ, जो हम लोग अज्ञान काल में पढ़ते थे, और प्रैक्टिकल में हमने दादी जानकी जी को देखा कि बाबा इनको जनक बच्ची कहता है, राजा जनक कहता है। तो हमें भी अपना कारोबार करते हुए विदेही रहने का अभ्यास करना है, वैरागी बनकर के रहना है। फिर हम सब बाबा का एक एक बच्चा बाबा को पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष कर रहा है। आप कहो दीदी, मैं तो अकेली ट्रेवलिंग कर रही हूँ, मैं तो अकेली घर में रहती हूँ। नहीं, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। ये तो भजन भी बने हुए हैं। तो कहीं पर भी है, हम हर एक 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 बाबा का बच्चा बाबा को पूरे विश्व में प्रत्यक्ष कर रहा है। बाबा ने इस वर्ष भी काम दिया, बाबा ने कहा अपने चेहरे से, अपने चलन से बाप को प्रत्यक्ष करो। जैसे रोज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, बाबा कहते एकांतवासी बनो, एकता में रहो, एक रस स्थिति बना के रखो। तो बाबा रोज हमारा जो श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने से वरिष्ठ को देख रहे होते हैं। आप लोग भी यहाँ देख रहे हो, अपने वरिष्ठ सूरज भाई को देखा, शीलू दीदी है, शशि दीदी, आप तो खुद साक्षात्कार कर ही रहे हो रोज। तो चेहरे और चलन से, बोल से, कर्मों से क्या वो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे? कर रहे हैं। हर एक बच्चा बाबा का बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है। दादी रतन मोहिनी जी को हम देखते थे अंत तक, फोटो होना है, कुल्लू के भाई बहन उठे, कुल्लू के भाई बहन उठे, आपका फोटो होना है। शायद थोड़ी देर वो बूंदाबांदी रुक गई है, जल्दी जल्दी उठ के जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप जाएगा गुरुग्राम का। तो ये मैं दूसरी बात सुना रही थी कि बाबा, हमने दादी रतन मोहिनी जी को देखा कि दादी कैसे अपने द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर रही थी, एकता में रहना है और एकांतवासी और एक रस स्थिति के द्वारा। तो ये तो हुई हमारी धारणाएं कि हमें अपनी धारणाओं को मजबूत करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और जैसे हमें कोई बढ़िया चीज मिलती है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं माताएं, कोई बढ़िया चीज मिली, सस्ती मिल गई, और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल गई। महात्मा बुद्ध का सुना, राजा जनक का हमने सुना, और दादी रतन मोहिनी जी जो सिखाते थे एकांत में रहना और एकता में रहना और एक रस स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना। तो जब हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़ों ने हमें सिर्फ सुनाया नहीं है, हमें करके दिखाया है, तो हम हैं बेहद के वैरागी सन्यासी। भक्ति मार्ग में हम लोग देखते हैं विद्वान, आचार्य, पंडित, ऋषि, मुनि, और बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वो तो हद के हैं, आप हो बेहद के। आपने जब विकारों का सन्यास किया, छोड़ दिया, सो छोड़ दिया। आज बाबा मुरली में मोह के ऊपर समझा रहे थे। तो अगर हमें मोह को छोड़ना है तो कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? क्योंकि मुझे मोहन कृष्ण की दुनिया में जाना है, तो जिसमें मोह नहीं होगा, पासपोर्ट तो उसी को मिलेगा ना, जिसमें मोह नहीं होगा। दूसरा मिसाल बाबा देते हैं नर्स का। हॉस्पिटल में भी आप देखो कितने पेशेंट्स आए, कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने बीमार आए, ठीक होके चले गए। नर्स किस किस में फंस जाती है? वो नर्स है, वो तो हद की सेवा कर रही है। बाबा कहते हैं आप बेहद के हो, हर बात में बाबा कहते हैं बेहद के सेवादारी, बेहद के सन्यासी, बेहद के वैरागी। और बाबा कहते कि बच्चे मोह ममता को ये कीड़ा है। जैसे आप देखो गोभी में कीड़ा किस कलर का होगा, मटर में कीड़ा देखो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बाबा कहते कि आप सेवाएं कर रहे हो, बड़े बड़े स्केल पर भी कर रहे हो, लेकिन वो कीड़ा भी बीज के साथ बोते जा रहे हो, तो फल तो मिलेगा बड़ा बड़ा, क्योंकि आपने सीजन पर ठीक टाइम पर बोया था बीज, लेकिन हर एक में कीड़ा लगा हुआ, खा भी नहीं सकेंगे, पद कम हो जाएगा, मेहनत भी कर रहे हैं संगम पर। तो बाबा कहते कि जब आपने छोड़ दिया, बाबा को दे दिया, बाबा कहते ना अक के फूल बाप को अर्पण कर दो। भक्ति में तो बहुत सारी कहानियां बन गई हैं कि जब गुरु नानक 13 पे आके रुक गए थे ना, फिर बोले 13 तुझको अर्पण, उनको समझ आ गई थी कि 13 गिनती हो रही थी किसी चीज की, 13 रुक गए एकदम, उनकी सोई हुई आत्मा जाग गई उसी समय ना। तो बाबा कहते जब आपने दे दिया, मोह भी दे दिया, बाबा ये घर आपका है, बाबा ये बच्चे आपके हैं, कल सुन रहे थे सुशील भाई से ये पत्नी किसकी है, कल सुन रहे थे ना सब, तो जब है ही सब कुछ बाप का, तो मैं नहीं, मेरा नहीं, तो बाबा कहते आप बन जाओगे, अभी अगली क्लास में भी दीदी स्पष्ट करेंगे, मैं और मेरे का त्याग। नहीं तो वो हम बीज तो बो रहे हैं संगम पर, लेकिन कीड़ा भी साथ साथ बोते जा रहे हैं, जो हमको फसल नहीं मिलेगी। ये दो पॉइंट याद हो गए। अब मैं दो पॉइंट सेवा के बताना चाहूंगी। जगदीश भाई जी, हम सबको सेवा के लिए कैसे उमंग उत्साह भरते थे कि आप लोग अपने लिए जी रहे हो, योग कर रहे हो, भट्टी कर रहे हो, क्योंकि उन दिनों में सारा दिन, जैसे मेरा मंडे का दिन होता था, चक्रधारी देवी का मंगलवार का दिन होता था, सुधा बहन जो रशिया में है बुधवार का दिन, ऐसे हम सब बहनों का एक एक दिन, भाई भी होते थे सेंटर पर, कि सुबह अमृत वेले से लेकर शाम को 5:30 बजे के रिकॉर्ड तक बोलना ही नहीं है। तो जब हमारा वो, तो मैं डिटेल में कभी फिर सुना दूंगी, मैं तो एक लाइन सुना पा रही हूं कि इस प्रकार से हमें समझाते थे कि आप लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, बाबा का संदेश कौन देगा। एक बार तो उन्होंने क्लास में पीछे से आए, मैं उनके साथ साथ पीछे से अंदर आई, पेन मेरे को कहा पेन दे दो, मैंने पेन पकड़ा दिया, पीछे से भाई को टच किया, उसने ऐसे देखा, क्योंकि आगे से आएंगे तो दृष्टि लेने लग जाएंगे सब, पीछे से आके उनको कहा, एक को वो ऐसे हुआ, दूसरा भी ऐसे हुआ, फिर उनके पास आगे खड़े होकर के बोले, मैं चेक कर रहा था कि ये सब पत्थर की मूर्तियां तो नहीं बैठी, जीते जागते बैठे ना, जिंदा है ना, ये लोग तो रोज मुरली सुन रही हैं, मैं भी वही सुन रहा हूं, मुझे बाबा छोड़ता नहीं है, ये लोग तो कहीं पत्थर के तो नहीं बैठे हुए। ऐसे पीछे से पेन से टच होता था बीच बीच में। 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, तो अभी मैं वो 2 पॉइंट सुनाने जा रही हूँ सेवाओं के, कि हमें कहा जाता था जैसे अभी राखी आ रही है, क्या प्लान कर रहे हो बाबा, मुरली में कह रहे हैं वैरागी हो आप, सन्यासी बन गए, व्हाइट कपड़े पहन लिए, सेंटर पर भी हो, भाई बहन भी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन प्रदर्शनी के ग्रुप बनाओ। आज की डेट में भी शक्ति नगर में जब मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ सारे सेवाएं देख रही होती हूँ कि 6 जनों का एक एग्जीबिशन ग्रुप बना हुआ है, और हर सैटरडे या संडे जो सूटेबल हो उस ग्रुप को, कोई भी एरिया ले लीजिए आप, लिस्ट बनी होती है डायरी में, आज हम 6 जने उस एरिया में शाम को 4-4:30 मौसम के अकॉर्डिंग प्रदर्शनी करेंगे 2 घंटे की। वहीं पर मैंने देखा लिटरेचर रखा हुआ है बेंच के ऊपर, चद्दर सी दरी बिछाई हुई है, कोर्स हो रहा है, पार्कों में पता नहीं कहां कहां पर वो सेवाएं कर रहा है ग्रुप, कब से कर रहा है। हर 6 मास के बाद उनको दीदी कुछ गिफ्ट भी देती हैं, केक भी कटवाती हैं कि देखो ये जिम्मेवारी इन्होंने ली है सेवाओं की कि हम प्रदर्शनी करेंगे। बाबा रोज कहे रोज कहे तब भी हमें समझ नहीं आ रहा, चलो इन्होंने जिम्मेवारी ली है। फिर हमें कहा जाता था कि अभी राखी आ रही है, 2 बहनें एक भाई, चाहे एक माता को ले लो साथ। ऐसे हमारे अभी भी ग्रुप बने हुए हैं। आप लोगों को 20 जगह कवरेज करना है और सबको ये माउंट आबू का बताना है, कैसे हमारी संस्था कार्य कर रही है, और पुलिस डिपार्टमेंट में भी क्या सुनाना है आप लोगों को कि ऐसे हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर यहाँ सेवाएं कर रहा है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं पीतमपुरा में देख रही हूँ, तो हम लोग उनको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई सब जन्माष्टमी की हमने बाहर झांकियां लगाई हैं, तो मार्केट वाले थोड़ा हमें ऑब्जेक्शन कर रहे थे, एकदम उनके भाई आ जाते हैं मोटरसाइकिल पे, मैंने देखा 2-3, और चुप करके हम लोग सारा बाहर तक काफी कवरेज करते हैं जन्माष्टमी पर भी। तो ये जो हम वैरागी हैं, हमारी धारणाएं मजबूत हो, हम भट्टी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ सेवाओं को भी अपनी वैराग की स्थिति से बढ़ाना है। तीसरा सेवा का एग्जाम्पल आता है, राखी के बाद आती है रामलीला ग्राउंड। हम लोग कितने सालों से पीतमपुरा में, 30 सालों से रामलीला ग्राउंड हमें वो फ्री में स्टॉल देते हैं, सबको 30,000 का देते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको फ्री में देते हैं, और हमें स्टेज पर भी बुलाते हैं, सम्मान देते हैं कि दीदी आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, 5,000 लोग बैठे ही होते हैं। सिर्फ उनका एक संकल्प होता है, दीदी माउंट आबू से आप हमारे लिए डायरी और पेन हमें जरूर दे दिया करो, और जो ये आप पढ़ के सुनाती हो ना स्लोगन्स, ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आ गए हैं। कई मधुबन भी आए हैं उसमें बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कोई खारी बावली के, कोई कहां के। तो ये हमें सिखाया किसने, भाई साहब ने। मैं कई बार कहती थी सेवा सेवा सेवा, सारा टाइम सेवा, कहा नहीं सेवा जरूर करनी है, अभी मैं विंग्स भी बनाने जा रहा हूं, फिर आप लोगों को सभी बहनों को एक एक विंग में कर दूंगा। सेवाएं कौन करेगा बाबा की, जैसे मैं ट्रेन में आ रही थी परसों, 15 नर्सिस थी हमारे साथ, जो मानसरोवर में प्रोग्राम था, तो ये कहां से आ जाता है काम। ये बाबा ने सिखाया, बड़ों ने सिखाया कि वैरागी बनो, छोड़ दिया विकार, छोड़ दिए मोह, छोड़ दिया काम, छोड़ दिया क्रोध, छोड़ दिया। उसकी गहराई की क्लासेस तो हम सब ने कल भी सुनी है बड़ों से, परसों भी सुनी, और कल शशि दीदी से अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे सुने हैं हमने। लेकिन अब अपनी स्थिति की बात आती है, जैसे हम लोग पंजाब केसरी में जो बड़े हैं वहां के, किरण चोपड़ा जी, तो जब उनका स्टाफ होता है 150 का, तो प्रश्न उन्होंने लास्ट ईयर राखी पर पूछा मेरे से, दीदी आप लोग व्हाइट कपड़े सब पहनते हो, आप लोग सन्यासी हो क्या? मैंने कहा हाँ जी, हम बेहद के सन्यासी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है वो हर मंडे की पंजाब केसरी में धार्मिक वाले पेज पे ब्रह्मा कुमारी इसका दे रही होती है। तो मैंने कहा हाँ जी, हम बेहद के सन्यासी हैं। कहा दीदी फिर एसी आप लोग यूज करते हैं? मैंने कहा देखिए, हॉस्पिटल में मैं देख रही थी हर जगह एसी लगे हुए हैं, आईसीयू में भी गंभीर पेशेंट। तो एक्चुअली परमात्मा ने हमें ना हमारी जन्म मरण की कहानी बता दी कि ये ना काफी बीमार हो चुकी है, इसको आईसीयू में रखो। आईसीयू में तो एसी चाहिए होगा ना। तो आत्मा बीमार हुई है तो शरीर पर इफेक्ट आ गया, तामसिक हो गया सब कुछ, हवा भी कैसी आजकल, पानी भी कैसा है आजकल। हम लोग साधनों को सिर्फ यूज करते हैं साधना बढ़ाने के लिए, हम बीमारियों को बढ़ाने के लिए साधन यूज नहीं करते। तो वो अगले दिन मंडे की अखबार में उन्होंने ये पॉइंट्स डाल दिए। तो मैं आज सुबह सोच रही थी बेहद के वैरागी हमसे किस किस ने कौन कौन से प्रश्न कहाँ पूछे थे। आप लोग तो व्हाइट कपड़े पहनते हो, आप लोग फिर ऐसे, फिर हमें पॉजिटिव उनको बताना पड़ता है कि कमल जैसा हमारा जीवन है, पानी के ऊपर नाव अच्छी लगती है ना तो पार हो जाएगी, और अगर उसमें छेद आ गया वो नाव को डुबो देगा। हम ऐसे नहीं है, हम विश्व शांति कर रहे हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा 21 जून का दिन भी आता है स्पेशल, थोड़ा उनको सेवाओं के बारे में बताना होता है। ऐसे ही शिवरात्रि आ रही है, मैं भाई साहब जगदीश भाई साहब के अनुसार सुना रही हूँ आपको, क्या प्रोग्राम करेंगे आप लोग? तो अभी भी हम लोग पूरा महीना शिवरात्रि के प्रोग्राम रखते हैं, सभी बीकेस जो रख सकते हैं अपने घर के बाहर पार्क में रख लो, अपने घर के आसपास मंदिर में रख लो। ललिता बहन खड़े होंगे, बताना जरा क्या सेवा करते हो, वहीं से एक लाइन में बता दो। जब ये एक ग्रुप बना हुआ है माताओं का शिवरात्रि का, शिव और शिवरात्रि की राह पढ़ रही होती है 13 जने, 13-13 का ग्रुप होता है। शिव और शिवरात्रि का ध्यान से पढ़ो, जो मंदिर के पंडित जी ओके करें आप दो माताएं जाकर आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान दो, फिर 10 मिनट मेडिटेशन सिखाओ, और ये पंडित जी को किताब देना या आश्रम की तरफ से प्रसाद देना। और कई पंडित तो मानते भी नहीं हैं, लेकिन इनके बेटे क्योंकि अच्छे हैं बिजनेस में, मंदिर को मदद कर रहे होते हैं, तो उनकी मदद से हम लोग मंदिर की ग्रिल पे ही लगा लेते हैं, चाहे उनके भागवत चल रहे हो। अभी भी है, 2-3 दिन के बाद बड़ा है भागवत, तो तब भी हम लोग सेटिंग करके आए कि जो समझते हैं आप समझाओ, जो पर्चा लेते हैं ज्ञान अमृत लेते हैं। ये हमें किसने सिखाया? हम घर से तो सीखे सिखाए नहीं आए ना, हमें बड़ों ने सिखाया कि आप वैरागी हो लेकिन बाबा के काम रोज की मुरली के अनुसार भी करो। आज बाबा ने कार्ड की बात कही 3rd पेज पर, बच्चे सबको कार्ड दो। चक्रधारी दीदी आज भी हर 2 महीने में सबके पर्स देख रहे होते हैं, भाई किसके पर्स में पर्चे हैं, किसके पर्चे हैं कि नहीं है दिखाओ, ये कम बात नहीं समझो, पर्चे चेक किए जा रहे हैं। माताएं घर जाती हो, घर जाने से पहले सब्जी वाला मिलेगा, मंदिर आएगा, मदर डेयरी आएगी, बच्चों की स्कूल की बसें जा रही होती हैं, कितने ज्ञान में चले हैं और वारिस क्वालिटी निकले हैं, वारिस क्वालिटी। हम लोग तो दीदी जब आती हैं सेंटर पर पीतमपुरा तो उनको खड़ा भी मैं करवाती हूँ, दीदी देखो ये सब वारिस क्वालिटी निकले हैं। कैसे निकले हैं? सब्जी ले रही थी और भैया ये सब्जी लंबा करती जा रही है और माताओं को पर्चा बांटती जा रही है, कभी कोई माता को कभी मंदिर के पास। ये तरीके किसने सिखाए? भाई सब ने, क्योंकि हर हफ्ते पूछा जाता था मुरली के अनुसार आपने होमवर्क क्या किया है। राखी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, कोई भी त्योहार हो, जैसे गीता आश्रम है साथ में, दुर्गा मंदिर है साथ में, गुरुद्वारा है जगदीश मंदिर, तो हम लोग हंस रहे होते हैं कि बीच में भगवान जी आके बैठ गए। अब जो असली ज्वेलरी रियल गोल्ड क्या होता है, वो तो परख चाहिए ना, नकली ज्वेलरी तो आजकल बड़ी चमक धमक में लगी हुई है। तो ये थी सब सेवा की पॉइंट्स, इनको तो हम एक तरफ रखे चार पांच बातों को। अब हम अपनी वैराग स्थिति पर आ जाते हैं कि कई आते हैं तो कहते हैं, दीदी मेरे को आज पूछा ही नहीं आपने। तो कहा कैसे पूछा जाए, कहा कि बस हम तो हैं ही वीवीआईपी, आप थोड़ा सा दीदी ध्यान दे दिया करो, ओम शांति हो जाए ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है। आधा घंटा हम बाई कार आते हैं सेंटर, तो मेरे को पूछा ही नहीं गया या किसी को बहुत ही पूछा जा रहा है। तो जब आपको कारण मालूम है तो आपको उसका निवारण भी पता होगा कि इसको क्यों पूछा जा रहा है। मान लीजिए इनका पेट्रोल पंप है बीके का, वो हर प्रकार से सेवाओं में लगे रहते हैं, और आप आपके पास वो चीज नहीं भी है तो हम थोड़ा सा तो इसको पूछेंगे ना। लेकिन जब तक हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगेगी, आगे लंका नहीं जलेगी, लंका रावण की नहीं जल सकती है। तो इन चीजों में नहीं अटको, नाम मान शान में, जिनको पूछा जा रहा है, चाहे आप मधुबन आते हो, आपको कारण भी पता होंगे। बाबा ने कहा था सब मिलकर के मधुबन को चलाएंगे, सेंटर को चलाएंगे। तो हम हर छोटी छोटी बात में ये नहीं सोचें, वैरागी हो सन्यासी हो, हम भी हैं आपके साथ साथ, लेकिन हम हर कारण का देखो निवारण कर रहे होते। इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा का जो हम सुन रहे थे कि ब्रह्मा बाबा रोज कचहरी करते थे, मन और बुद्धि से पूछते थे, हे मन हे राजा तू कहना क्यों नहीं मान रहा, तू मुझे भगवान को याद करने क्यों नहीं दे रहा। कल भी हमने सारा डिटेल सुना मन और बुद्धि के ऊपर, और कई बार तो बाबा अपने को चपटी भी काटते थे कि मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा, उसको क्यों नहीं याद करने दे रहा। और बाबा और मम्मा हमेशा कहते थे कि ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो कि मुझे अगली राखी अगली दिवाली देखनी ही नहीं है। और शीलू दीदी अपनी क्लास में सुनाते हैं कि तब से लेकर अब तक कम से कम मैं 60 दिवालियां तो देख चुकी हूं। तो बाबा ऐसे क्यों कहते थे, बाबा बच्चों को मजबूत कर रहे थे, बाबा बच्चों को संपूर्ण और संपन्न बना रहे थे, जिसका आज रिजल्ट हम देखते हैं कि कितना बड़ा वृक्ष शुरू कहां से हुआ था। कल भी सुन रहे थे शुरू कहां से हुआ था और कहां से कहां तक वो वट वृक्ष फैल चुका है, देश विदेश 140 देशों में 8500 सेवा केंद्र बाबा की सेवाओं में लगे हुए हैं, और लगभग 40-45 हजार समर्पित बहनें, 40 भी नहीं 400 भी नहीं 4000 भी नहीं, कितनी 40,000-45,000 बहनें बेहद बाप की सेवाओं में सेवा में लगी हुई हैं। तो बाबा ने सभी बच्चों को इतना मजबूत किया है, इसलिए बाबा कहते बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ, हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो मैं आपसे पूछती हूं कि बाबा कहते हैं बच्चे शांति में रह के हर काम करो, चाहे आप यहां पर हो, चाहे रेलवे स्टेशन आबू में बैठे हो, चाहे दिल्ली में उतरे आप, बाबा कहते हर काम बाबा की याद में शांति से करो। इसमें 6 बातें आती है। बाबा ने कहा था शांति आपका स्वधर्म है, पानी शीतल है ठंडा है, गैस पे रखा अब गर्म हो गया, फिर उबले हुए पानी को नीचे उतारा फिर ठंडा हो गया, उसकी नेचर क्या है शीतलता। आत्मा का स्वधर्म शांति, जैसे ही हम ट्रेन में भी मैं देख रही होती हूँ हम मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा की याद में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बाबा को याद कर रहे गीत भी चलाए होते हैं कईयों ने, वो स्थिति मेरी घर तक भी बनी रहे घर में भी बनी रहे, तो थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत होती है कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, वही मेरा पहला लेसन मेरे जीवन का लास्ट लेसन बनेगा आत्मा का पाठ। फिर दूसरा हम अपनी शांति की स्थिति में कैसे रहे, बाबा ने कहा था मुरली में पादरी को देखो एक क्राइस्ट की याद में साइलेंस में रहता है। तो हम है क्या? वो तो चलो द्वापर युग की आत्मा होगी, पादरी कलयुग की हो सकती है, और हम कब की हैं आत्माएं? सतयुग की आत्माएं। तो शांति के सागर के बच्चे, तो जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे भी तो वैसे होते हैं ना। मम्मा में कोई वैर था किसी के प्रति? वैर रागी, ना वैर ना राग, ना किसी से लगाव, ईर्ष्या घृणा नफरत, ना किसी से लव। तो जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे वैसे ही तो होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम है शांति के सागर के बच्चे। पादरी का मिसाल सामने रखो कि वो आत्मा जो परम धाम से बाद में उतरी है वो भी गॉड को याद कर रही है शांति में। तीसरी पॉइंट बाबा ने कही थी, शायद बड़ों ने कही थी, कि नोटों में आवाज नहीं होती, खुले पैसों में आवाज होती है। समझ आ रहा है सबको? पीछे वाले हाथ ऐसे लाए, समझ आ रहा है? नोटों में आवाज नहीं होती है। जो सीनियर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं ज्ञान योग धारणाओं में, उनके अंदर वो चंचलता, ओछापन, वो फालतू हंसी मजाक करना, नोटों में आवाज नहीं होती है, सिक्कों में होती है। फिर कहा कि जो नींव के पत्थर बोलते नहीं है, पांडव भवन नींव है पूरे वर्ल्ड की, नींव के पत्थर बोलते नहीं है, और जो पेड़ का जो बीज है वो भी नीचे होता है शांत मिट्टी धूल के अंदर, और टहनियों को देखो क्या शोर मचा रही है, क्या हवाएं चल रही है। बाबा ने कहा था ये सब बाद में निकले हैं ना, इसलिए इनकी चमक ज्यादा दिखाई दे रही है, और चिड़िया ठुंगा भी उसी को ही मारती है। नींव के मजबूत होते हैं। हम सब कौन बैठे हैं? नींव के पत्थर बैठे हैं ना, हम सब पुराने बाबा के बच्चे बैठे हैं। और पांचवी बात जो मम्मा कहती थी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के पुरुषार्थ करो, और दीदी मनमोहिनी जी कहते कि अब घर जाना है। डॉक्टर आपको कह दे कि भाई जी 3 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा मैं घुमाऊं, प्रगति मैदान घुमाऊं, अक्षरधाम घुमाऊं, डॉक्टर ने बोल दिया ना मुझे 3 ही महीने है मेरे पास, क्या करूंगा मैं? भाई बताएंगे? दीदी ने कहा अब घर चलना है, स्लोगन पक्का हो गया। तो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर कह रहा है हम उसकी बात को मान के हमारा पुरुषार्थ कैसे हो जाता है? और बाबा कब से कह रहा है? 90 साल हो गए हैं, लेकिन हम दृढ़ता से तीव्र पुरुषार्थी बन करके ये पुरुषार्थ करें कि मुझे बेहद का वैरागी बन करके, अब समय ही कितना बचा है अपनी जीवन के, जरा इयर्स लिख लो कितने साल हो गए। इतने कम समय में मुझे अपना समय श्वास शक्तियां अच्छे कार्य में सफल करनी है। आपकी जेब में क्या है? कहते जी मेरी जेब में मेरी दुनिया है। दुनिया मेरी जेब में कैसे? भाई बताएंगे? मोबाइल। अभी हमें लकड़ी के दरवाजे बनवाने हैं, डिजाइन किस में देखे जा रहे हैं? गेट बनवाना है, पर्स लेना है, चप्पल लेनी है, पर्स लेना है। दुनिया मेरी जेब में, मुझे लगाव हो गया मोबाइल से। जब मुझे अंदर से लगाव हो गया तो अब बाह्य रूप से कोई मेरे मोबाइल को हाथ लगा के दिखाए? विकार पता चल रहे होते हैं अंदर से। बाबा ने कहा था अंदर आपके अंदर लगाव है किसी के प्रति भी, आपका बाह्य रूप में दिखाई दे जाएगा। जैसा सोना वैसा जेवर, जैसा संस्कार वैसा संसार भी बन जाएगा उनका, जैसा बीज पेड़ भी वैसा ही निकलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपके अंदर सूक्ष्म में काम विकार है, बाहर से पता नहीं चलता क्या? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, आंखें मन का दर्पण होती हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह ममता है, अहंकार है, जिस पर गुलजार दादी सुनाते थे, क्योंकि गुलजार दादी हर मास शक्ति नगर सेंटर पर आते थे, जगदीश भाई सब के साथ कारोबार होता था सारा, तो तब मैं सुन रही होती थी। तब तो हम छोटे ही थे, 20-21 साल के थे, अभी तो 44 ईयर्स हो गए बाबा के घर रहते हुए। तो उस समय हम लोग देखते थे कि अंदर से लगाव है तो वो चीजें बाहर से दिखाई देती, आंखों से पता चल जाता है इसके अंदर कौन सा विकार है, इसके अंदर कौन सी बुराई है, और मुरली के अकॉर्डिंग उस पर ध्यान भी खिंचवाया जाता था। दादी भी बहुत ध्यान खिंचवाती थी, दादी भी कहती थी कि शमशानी वैराग्य है क्या आपके अंदर? वो क्या होता है शमशानी वैराग भाई? कल भी सुन रहे थे ना राम नाम सत्य, शमशानी वैराग। शमशान में गए तब तक तो भगवान जी आप ठीक हो, सत्य हो, और जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकले, कहते वैसे तेरे को पता ही तो होगा इसने प्रॉपर्टी कितनी छोड़ी है बच्चों के लिए। वो कहते मेरे को नहीं पता। नहीं, तेरे को पता तो होगा, तू बता ही नहीं रहा। बाहर निकलते ही काम नाम सत्य है, क्रोध नाम सत्य है, अहंकार नाम सत्य है, अब तो ये शुरू हो गया ना। तो शमशानी वैराग कहती थी दादी कि वो वैराग नहीं लाना, शमशान के अंदर तक तो भगवान का नाम सत्य है, और बाहर आए और ये झूठ नाम सत्य है, लोभ नाम सत्य है, ये हद के वैरागी नहीं बनना। पहले जमाने में जब किसी की डेथ होती थी तो क्या होता था घर का माहौल, भोजन का, पूजा पाठ का, 13 दिन तक देखो, आज ले आओ 2025-26 में क्या हो रहा है, कहीं हम तो वैसे तो नहीं बन रहे। वो चीजें हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो नॉन बीकेस हैं, अज्ञानी हैं, नहीं समझ उनको, वो अपने हिसाब से जैसे भी कर रहे हैं। अभी तो घर आके नहाए भी नहीं, मैंने देखा कि वो अपने मोबाइल खोल करके हंस हंस के बातें भी हो रही है, अभी तो नहाए भी नहीं शमशान घाट से आके। पीछे किसी की डेथ हुई, जैन फैमिली के बड़े थे वो, तो वहां पर बैंक्वेट हॉल में मैंने देखा भजन चल रहे थे, जैसे सूरज की गर्मी से, और एक हे राम हे राम। तो मैं बाबा को याद कर रही पीछे बैठ के, तो जिनके घर गई थी मैं, उस भाई को मैंने कहा हर्ष भाई पीछे आओ, और ये जो सिंगर है इसको पीछे बुला के लाओगे? तब तक म्यूजिक बाकी, इसकी पूरी पार्टी थी वो गा ही रहे हैं ना, उसको मैंने अपने मोबाइल से ये मत कहो खुदा से और प्रेम से बस दो घड़ी, ऐसे 3-4 गीत उसको दिए, तो वो ब्रह्मा कुमारी इसको मानता था, उसने फटाफट अपने मोबाइल पे लिए और उसने उसके बाद वो शुरू कर दिए भजन, और मुझे उन्होंने कहा था दीदी आप भी इसके बाद सुनाना। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, जो 3-4 जनों का ग्रुप होता है, कि गाड़ी में हम लोग 5 जने निकल सकते हैं, तो पॉलीथीन रख लेते हैं या पेपर बैग, एक में पुरानी ज्ञान अमृत है आपके पास, एक में मीडिया है पुरानी, लेटेस्ट भी है, नहीं है कुछ हमारे पास स्टॉक तो लिटरेचर की किताबें निकाल लो, पर्चे निकाल लो, तो 4 ग्रुप्स में सब पूरे हॉल में फैल जाते हैं, कि जैसे ही उनकी पगड़ी रस्म हो जाएगी तो बाबा का ये लिटरेचर सबको पकड़ाना है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, पंडित जी माइक पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले आ गए हैं जी, आप आगे आइए, मैं तो अब बस सिर्फ पगड़ी बांधने के लिए आऊंगा। तो मैं भी एक सेकंड ऐसे हो जाती हूँ कि पूरा हेड है वो वहां का, अब हमें ऐसे माइक अपने आप दे देते हैं, सिर्फ हम शुभ भावना से, शुभकामना से, निस्वार्थ भाव से, कि बाबा सबको आपका परिचय मिले, बाबा आपकी प्रत्यक्षता हो, घर घर में सुख शांति खुशियां आ जाए, भावना तो वही होती है ना सेवा की। बाकी अगर नेगेटिव भावनाएं होंगी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, संकल्पों से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट कहना था आपको, हमारे अंदर शमशानी वैराग नहीं होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जब हम मुरली की क्लास करते हैं, जैसे हम लोग सुबह अमृत वेला आज भी कर रहे थे, तो अपनी परसेंटेज जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, हम अपनी परसेंटेज बाबा को दें आज की कि बाबा सुबह 10 में से 5 नंबर थे, मेरा मन टिका हुआ था बाबा, ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु बाबा को निहार रही थी, साइलेंस में निहार रही थी। और जब हम मुरली क्लास में बैठे हैं तो भी सोल कॉन्शियस होकर के बाबा से मेरी पर्सनल मुलाकात, जैसे अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल वरदान मिलते थे ना, बाबा मुझे आज की मुरली में काम दे रहे हैं, विनर हो आप, मोहजीत हो। बच्चे ये पुरानी चमड़ी है, पुरानी चतियां लगी हुई, बाबा कहते चतियां लगी हुई। तो बाबा हमको कहता है कि ये पुरानी जुत्ती है, तो पुरानी चप्पल से किस किस का लगाव है, पुरानी चप्पल गुम हो गई मेरी ना, पुराना पर्स था मेरा, पुराना छाता था कोई ले गया, कहते छोड़ना पुराना था ना। रोज की बातें हम देख रहे होते हैं, बाबा रोज कह रहा है पुरानी दुनिया, देह देह के संबंधी, देह के वैभव, देह के पदार्थ, बच्चे पुराने। अभी तो नई जर्नी हमारी शुरू होने जा रही है, किसी की नई जर्नी शुरू होती है तो हैप्पी जर्नी, तो पुरानी दुनिया। अहंकार किस चीज का है आपको, पुरानी दुनिया का, सुंदरता का, पढ़ाई का, फैमिली बैकग्राउंड का, किस चीज का आपको अहंकार है? ये सब तो पुराना है, सब खत्म हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं अहंकार नहीं करो, ये सब खत्म हो जाएगा। आप बाप के हो, बाप मेरा है, अमृत वेले अगर उठते ही आपके मन में आता है मैं बाबा का बाबा मेरा, और रात को सोते हैं यही संकल्प आता है मैं बाबा का बाबा मेरा, तो आप फाइनल समझ लीजिए बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मेरा साथी है, ईश्वर मेरा साथी है, वो मेरे साथ है। रात को भी अपना चार्ट पता चल जाता है, सुबह उठते ही पता चल जाता है, नाश्ता करते भी पता चल जाता है कि बाबा की याद में हूँ, मेरा आंखें मेरी जबान मेरी कर्मेंद्रियां, मुझे मन जीते जगत जीत बनना है। ये हमें बड़ों ने सिखाया कि फर्स्ट वीक और लास्ट वीक जब भी आप अमृत वेला कर रही हैं या मुरली की क्लास कर रही हैं या करा रही हैं, बाबा को अपना चार्ट देना कि मुरली के सार में आया है कि अब ये पुरानी दुनिया गई की गई। प्रश्न में बाबा ने कहा माताओं की महिमा की, बाबा ने मोहजीत के ऊपर बाबा ने गाइड किया, आज ये करो, बाबा ने आज ये वरदान दिया है, तो अपनी परसेंटेज बाबा को दो, मैं इतने पानी में हूं। अपने को झूठा झूठा ऐसे नहीं करो कि नहीं मेरे को तो सब याद हो गया, फर्स्ट पेज मुरली का मैंने सुना, इसमें 5 बातें मुझे बाबा ने ये कही, अब सेकंड पेज शुरू हुआ है, 5 बातें मुझे बाबा ने ये समझाई, अब ये मेरे अंदर है, ये और दृढ़ता से आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब ज्ञान में लेट हो गए। मैं तो कई बार कहती हूं कि जो दादियों के साथ जिनका भाग्य रहा है, और हमने लिया जगदीश भाई साहब के साथ भी 18 साल उनके सेवाओं में, जो मेरे से मदद हो सकती थी मैंने की, लेकिन अभी के 10 सालों का मैं रिजल्ट देख रही होती हूँ कि उल्टा नाम मान शान जो हमें नहीं आना चाहिए, हमें मुरली याद हो जानी चाहिए, मुरली कम से कम हम 5 बार जरूर पढ़ें। 12 बार दादी जी कहते थे, 5 बार दादी जानकी जी कहते थे, हमारे हाथ में मुरली है, लेकिन हमारा मन बुद्धि एकाग्र शांत रहे उसमें मेहनत होती, उसको भटकने की आदत पड़ गई। मन को बिठाना होता है हल्का डबल लाइट करके, मन समझते हैं आप 40 किलो का, वो सोच सोच के 40 किलो का हो रहा होता है, और भट्टी का नाम है डबल लाइट, आज स्लोगन में था अव्यक्त इशारे में डबल लाइट, लाइट हाउस माइट हाउस। तो बाबा मुझे याद रहे, बाबा के पॉइंट्स मुझे याद रहे, या ये जो मन भारी हो जाता है किसी की बात को ले ले करके, नहीं मैंने तो अक के फूल अर्पण कर दिए, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, बाबा आप करो। बैठ जाते हैं हम लोग, रात के 9 बज गए 9:15, एकदम हल्कापन आ जाए, एकदम हल्कापन। बाबा कहीं रात को सोए सोए जाना पड़ गया तो एकदम लाइट, और सुबह बाबा हेलो बाबा ऐसे मुस्कुराहट आ जाती है जैसे छोटा बच्चा नहीं हंसता होता, मैं अपने को कई बार देख रही होती हूँ, सुबह उठते हंसी किस बात की आ गई, हेलो बाबा आज का दिन और अच्छा आपने दिया, बोनस में दे दिया बाबा, आज और पुण्य का खाता हम जमा करेंगे, जहां पुण्य का खाता होगा वो आत्मा बेहद की वैरागी होगी, उसके ऊपर बोझ नहीं हो सकता, परेशानी चिंता भय तनाव डिप्रेशन बहुत दूर की बात है, अगर उसका पुण्य का खाता जमा है। बाबा ने कहा था मधुबन में आना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना, बाबा को भोग लगाना, लगाते हैं ना भोग, सेंटर पर भी लगाते हैं, घर में भी लगवाते हैं, मधुबन भी जाते हैं, बाबा को भोग लगाना अर्थात भोगनाएं खत्म करना, पुण्य का खाता जमा करना, और घर में गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। बाप दादा बोनस पॉइंट्स दे रहे हैं, बाबा ने 3 बातें बोली ना, मधुबन, भोग, गीता पाठशाला। बाबा ने कहा उनको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, उनका पुण्य जमा हो जाता है, वो है मेरे बेहद के वैरागी बच्चे। अव्यक्त वाणी पढ़ो, बेहद की वैरागी का टॉपिक लिख करके, हर साल की वाणी में आ जाएगा, हर साल की कोई भी किताब ले लो, बेहद का वैरागी इंडेक्स में से देखो, आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग डेली एक अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं। जैसे पीछे भी मेरे से आशा दीदी पूछ रहे थे किसी मीटिंग में कि आप लोग कैसे तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, मैंने कहा दीदी सभी बहनों को एक एक अव्यक्त वाणी की किताब दी हुई है बड़े दीदी ने, और 1 महीने के बाद आपने इसमें से क्या क्या पढ़ा, क्या अच्छा लगा, पहले मेरे को सुनाना फिर क्लास में सुनाना। तो इसलिए सब बेहद के वैरागी बन करके, किसी किसी के पास तो दीदी मोबाइल भी नहीं है, उनको चाहिए भी नहीं, सिर्फ बाबा की याद बाबा की सेवा में वो लगी रहती है। तो ये मैंने दीदी को आशा दीदी को बोला था। ओम शांति। बाकी तो बहुत सारी क्लास के पॉइंट्स हैं, पर समय की सीमा को ध्यान में रखते यही पूरा कर रही हूँ अपने अनुभव का क्लास। बाकी फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको बड़े भाई सब के साथ के अनुभव सुनाऊंगी। और अभी आप सबके लिए स्पेशल क्या बना है, क्या बना है, जलेबी। किचन में नीचे ही डाइनिंग में आप लोग गरम गरम चाय जाकर पीजिए, गरम गरम जलेबी खाकर, फिर 12 बजे प्रभा दीदी ज्ञान सरोवर के आ जाएंगे, फिर उनसे हम सुनेंगे कौन सा टॉपिक है, मैं और मेरापन कैसे खत्म हो, ठीक है। ओम शांति। बाबा को 1 सेकंड थोड़ा याद करें फिर आप जाएंगे।
Thank you.